कहानी सुनूंगी। तो सबसे पहले मम्मा का लौकिक नाम था राधे, और मम्मा का जो जन्म हुआ था वो 1919 में हुआ था अमृतसर में। मम्मा के पिताजी का नाम था पोकर दास और माताजी का नाम था रोचा। और इनकी दो बहनें थी, एक बड़ी बहन जिनका नाम था पार्वती, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, और छोटी बहन का नाम था गोपी। और इनके जो पिताजी थे मम्मा के, वो सोने चांदी का बिजनेस करते थे, व्यापार, और देसी घी का व्यापार करते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनके बिजनेस में लॉस हो गया, और सट्टेबाजी गैम्बलिंग में उनको बहुत कुछ लॉस हो गया, तो फिर उनको हार्ट फेल हो के उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर मम्मा की माताजी और मम्मा और जो उनकी छोटी बहन थी, वो अमृतसर से फिर हैदराबाद आ गए, हैदराबाद सिंध, और अपनी नानी और मामा के घर पे। और जो शांतामणि दादी है, उनकी जो लौकिक माताजी है, वो मम्मा की माताजी की लौकिक बहन थी, सगी बहन, और उनकी एक तीसरी बहन भी थी। उनके पति का भी मृत्यु हो गया था, तो बहुत दुख था घर में। अब ये लोग सब अपने नानी के घर में रह रहे थे, और फिर वहाँ पर मम्मा का एडमिशन न्यू मॉडल स्कूल में हुआ, और मम्मा की बहन और मम्मा दोनों वो स्कूल में जाते थे। बताते हैं कि छोटेपन में मम्मा बहुत फैशनेबल थी, अच्छे अच्छे फ्रॉक पहनती थी मम्मा। बताते हैं कि मम्मा का फेवरेट सॉन्ग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, और इस सॉन्ग पे मम्मा को बहुत सारे प्राइजेस भी मिले। तो मम्मा वाइट फ्रॉक और हैट पहन के इस सॉन्ग पे बहुत डांस करती थी, ऊंची चप्पल। और कहते हैं कि बाजार में जो भी नए कपड़े आते थे, वो मम्मा पहले खरीदती थी, और अपनी बुद्धि से मम्मा डिजाइन बनाती थी उस पर। उनकी मौसी बनाती थी, और मम्मा वो डिजाइन बनाने के लिए कहती थी, तो इतना उनको शौक था। तो उनको गाने में, डांसिंग में हमेशा नंबर 1 प्राइज मिलता था, और पढ़ाई में भी मम्मा नंबर 1 थी। दिखने में मम्मा बहुत सुंदर थी, बहुत फेयर थी, लंबे लंबे बाल थे, और उनकी जो बहन गोपी थी, वो भी उनकी तरह ही दिखती थी। तो जब बाजार से वो गुजरते थे, तो लोगों की नज़र उन पर बहुत सहज रीति से पड़ती थी। तो ये सब चल रहा था। और एक तरफ जो उनकी माँ है और उनकी जो बहन, ये अपने पति को खोकर और अपने पिता को खोकर बहुत शोक मनाते थे। तो उन लोग घर में सत्संग करते थे, शांति का सत्संग करते थे। तो शांतामणि दादी की जो माता जी है, वो रोज उनके घर पे जाती थी। तो ये चीज़ जो बाबा की युगल यशोदा माता, ये खिड़की से रोज देखते थे कि ये माता कहीं पर जाती है रोज। तो एक दिन वो उनको मिल गए रास्ते में, और उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाते हो रोज। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ऐसा है, तो हम सत्संग करते हैं शांति के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि दादा है यहाँ पर, और वो रोज ओम की ध्वनि करते हैं और गीता पर समझाते हैं, और बहुत लोगों को शांति का अनुभव होता है, तो आप भी जरूर आके सुनिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप उनको भी लेकर आना। तो तुरंत ये माता नेक्स्ट डे वो सत्संग में जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और बाबा वहाँ पर गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आत्मा के बारे में दिया होता है कि आत्मा अविनाशी है, और सुख शांति के बारे में बताते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे फिर ये उनकी दूसरी दो माताओं को भी लेके जाते हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको शांति का अनुभव होता है, जैसे देह से पूरा न्यारापन। और जब ये वापस लौटते हैं, तो बड़े खुशी वाले चेहरे होते हैं इनके। तो मम्मा जो राधे, राधे है जब उनका नाम, तो वो देखती है और कहती है कि कल तक तो तुम बहुत रोती थी, और आज तुम्हारे सबके चेहरे इतने खुशनुमा कैसे हैं। तो फिर उनकी माता जी कहती है कि हम एक सत्संग में गए थे, और वहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पे वो गीता के बारे में पढ़ते हैं, और आपको स्कूल में गीता के बारे में पढ़ाया जाता है ना, तो तुम भी चलना हमारे साथ और फिर हमको समझाना। तो फिर नेक्स्ट डे मम्मा भी ओम मंडली में जाते हैं, उस जगह का नाम ओम मंडली रखा है। तो जैसे ही राधे वहाँ पहुँचती है तो बाबा जब देखते हैं तो बाबा को लगता है कि मेरी वारिस बेटी आ गई, पहली नज़र में ऐसा लगता है। और राधे को भी ऐसा लगता है कि मेरा बहुत सालों से कल्पों से बिछड़ा हुआ पिता मुझे मिल गया। और फिर बाबा उनको लौकिक रीति से पूछते हैं कि आप क्या करती हो, कितनी में पढ़ती हो ऐसे। फिर उस टाइम मम्मा की उम्र कुछ 17 साल है, तो उनकी शादी की बात चल रही होती है घर में। तो एक दिन बाबा मम्मा से पूछते हैं कि तुम पीताम्बरी से शादी करोगी या सूट बूट वाली से शादी करोगी, तुम इस ज्ञान अमृत को पी के विश्व का कल्याण करोगी या तुम शादी करके घर बार संभालोगी, और मैं आपको 24 घंटे देता हूँ इस पे सोचने के लिए, आप 24 घंटे में सोचना और फिर मुझे बताना कि क्या करना है। तो मम्मा एक पल में ही उत्तर देती है। मम्मा कहती है इसमें 24 घंटे रुकने की बात नहीं है, मैं तो गिरधर गोपाल की राधे हूँ और मैं तो ज्ञान अमृत पी के विश्व का कल्याण ही करूँगी, ऐसे मम्मा कहती है। और मम्मा ओम मंडली में ओम की ध्वनि लगाती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो उस प्रकार फिर मम्मा का नाम ओम राधे हो जाता है। तो जब भी शुरुआत और एंड में मम्मा ओम की ध्वनि लगाती वहाँ पर और सितार बजाती थी मम्मा। फिर थोड़े दिनों के बाद बाबा कश्मीर चले जाते और मम्मा पूरा देखभाल करती है ओम मंडली का दूसरी बहनों के साथ, और बाबा वहाँ से पत्र भेजते थे, यही पत्र फिर ये बहनें या मम्मा के नाम पर आते थे और ये लोग सत्संग में बोल के सुनाते थे। उस टाइम जो गोपी है, गोपी बहन मम्मा की जो लौकिक बहन छोटी, वो एक दिन ओम की ध्वनि जब लग रही होती है वो तुरंत उनको ट्रांस ध्यान में जाती है वो, और उनको साक्षात्कार होता है कृष्ण का। और तब से यज्ञ में साक्षात्कार का पाठ चालू हुआ, कि कैसे ध्यान में जाने का जो पाठ था वो गोपी बहन के द्वारा चालू हुआ। और फिर बाबा के लौटने पर जब बाबा लौटते हैं तो फिर वापस वो ध्यान में जाती है और उनको बाबा कृष्ण के रूप में दिखते हैं और मम्मा लक्ष्मी के रूप में, राधे के रूप में दिखने लगती है। और तभी से ही सत्संग में आने वाले बहुत सारी कन्याएं और माताओं को ध्यान में जाना होना चालू होता है और वो लोग बाबा और मम्मा को इस रूप में देखना चालू करते हैं। तभी बाबा पवित्रता की बात बताते हैं उस टाइम कि बच्चे अगर आपको विश्व का मालिक बनना है, अगर आपको सतयुग में आना है तो आपको फिर पवित्र रहना पड़ेगा। अब इस सत्संग में आने वाली बहुत सारी माताएं थी, कन्याओं के लिए तो फिर भी था सहज, बट माताएं जो थी फिर उन्होंने ठान लिया कि हम पवित्र रहेंगे। तो फिर वो घर पे जाके अपने पतियों को कहने लगे कि हम विष नहीं देंगे, हम तो पवित्र रहेंगे, और ऐसे फिर बहुत हंगामा होने लगा। तो जब हंगामा होता था तो बाबा के पास लोग आते थे तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऊपर वाला आता है और बोल के चला जाता है, मैं तो है ना वही करूँगा जो वो बोलेगा, और ऐसे करते हुए मम्मा की तरफ भेजते थे बाबा। तो हमेशा जब भी कुछ होता था ना तो मतलब मम्मा को आगे रखते थे बाबा ये सब हंगामे में, क्योंकि मम्मा आगे रहकर इतना निर्भय और अडिग रहकर सब कुछ सामना करती थी और लोग शांत हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे यज्ञ में केसेस भी होते थे जहाँ मम्मा को बाबा ने आगे रखा। और फिर उसके बाद ये जो गोपी बहन है इनको टाइफाइड हो जाता है और इन ये शरीर छोड़ते हैं। तो उस टाइम भी बाबा सारी महिलाओं को शव यात्रा पर भेजते हैं, और शव यात्रा पर ऐसे पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि कोई शमशान घाट जाता नहीं था उस समय स्त्रियाँ, और ये देखकर सारे लोगों को बहुत आश्चर्य होने लगा। और उनका जो अंतिम संस्कार भी जो चिता को जो आग लगाते हैं वो भी मम्मा ने किया। तो ये सब चल रहा था। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद बाबा जैसे कुछ 8 कन्याओं को मिला के, उसमें मम्मा भी थे, इनको हेड बना के सारा अपना जो भी प्रॉपर्टी था वो इनके नाम कर दिया। और फिर जैसे कि फिर नए ये सब हो रहा था सिंध हैदराबाद में, और तब बाबा अलग रहते थे क्लिफ्टन, और मम्मा और अन्य बच्चे दूसरी जगह पे रहते थे। फिर जब माउंट आबू आए तब सब लोग साथ में मिलकर रहते थे। और फिर मम्मा का नाम मम्मा कैसे पड़ा, निर्मल शांता दादी अपने अनुभव में लिखते हैं कि वो जब छोटी थी तो बाबा उनको मम्मा के साथ रखते थे और सब लोग उनको तो ओम राधे बुलाते थे, लेकिन फिर निर्मल शांता दादी ने उनको मम्मा बुलाना चालू किया। तब से मम्मा का नाम मम्मा पड़ा और फिर सब लोग मम्मा बुलाने लगे। जब मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा बुलाती थी, यशोदा माता भी मम्मा बुलाती थी, बाबा बच्ची बच्ची बोलते थे, कभी मम्मा बोलते थे, तो ऐसे मम्मा का नाम मम्मा पड़ा। मम्मा को अन्य रूप में मम्मा की पूजा होती है। जैसे कि कहते हैं कि ये जो राधे है, सीता है, ये राज राजेश्वरी देवियां है, इनकी तो पूजा होती है, लेकिन जितनी दुर्गा अम्बा सरस्वती की पूजा होती है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियां है ये, उतनी उनकी नहीं होती। और मम्मा को सरस्वती के नाम से जाना जाता है, दुर्गा के नाम पे उसकी पूजा होती है, जगदम्बा के नाम से, शीतला देवी, क्योंकि मम्मा ने यज्ञ में ये सारे कार्य किए, इसलिए आध्यात्मिक रहस्य के द्वारा उनको ये इन रूप में पूजा होती है और उनका नाम है। तो मम्मा की फिर दिनचर्या कैसी रहती थी, तो जैसे उस दिन बताया कि सुबह मम्मा 2 बजे अमृत वेला उठ जाती थी और अमृत वेला 2 बजे चांदनी रात में बैठ के बाबा को याद करना, अमृत वेला मम्मा ने कभी भी मिस नहीं किया। ऐसे बताते हैं कि एक बार मम्मा हॉस्पिटल में थी और कोई मिनिस्टर मम्मा को मिलने के लिए आए और 12 बज गए उसके जाते जाते, और मम्मा को सोते हुए फिर 1 बज गया। तो फिर भी मम्मा 2 बजे उठ के अमृत वेला के लिए बैठी और फिर जो बहन उनके साथ थी उन्होंने मम्मा को पूछा कि आप ऐसे कैसे, आप तो 1 बजे सोए थे और आप 2 बजे उठ गए। तो फिर मम्मा ने कहा कि जब मैं उस मिनिस्टर के लिए 12 बजे तक जाग सकती हूँ, तो सुबह में तो मेरी मेरे पीयू के साथ अपॉइंटमेंट रहती है, तो मैं कैसे मिस करूँ उसको। तो इस तरह अमृत वेला मम्मा ने कभी मिस नहीं किया। और एक दिन क्या होता है, मम्मा 2 बजे से 4 बजे तक खुद योग करती थी और 4 बजे संगठित योग में आती थी। तो एक दिन मम्मा ने चक्कर लगाया तो देखा सब बच्चे सो रहे हैं। तो फिर मम्मा ने कहा कि बच्चे आपका जो पुजारी है ना मंदिर का, वो उठ के मूर्ति को स्नान करा के आपकी पूजा कर रहा है और आप बच्चे अभी तक सो रहे हो। तो ये सुनकर फिर सारे बच्चों ने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। तो ये दिनचर्या होती थी। उसके बाद मुरली क्लास में मम्मा 10 मिनट पहले ही आके वो सितार सितार बजाती थी मम्मा, और फिर बाबा आके मुरली चलाते थे। और मम्मा मुरली एग्जैक्टली ओरली सुना सकती थी जो बाबा ने सुनाया, इतना मम्मा का मुरली पर कमांड था। और कहते हैं कि मम्मा बाबा की एक एक ज्ञान की पॉइंट पर एक एक दो दो घंटा भाषण कर सकती थी। ड्रामा में मम्मा का इतना निश्चय था कि 2 घंटा दो दो घंटा मम्मा ड्रामा पे बोल सकती थी। तो मुरली मम्मा हमेशा सुनती थी, 3 बार पढ़ती थी। अगर ऐसा किसी ने अपने अनुभव में लिखा है, रात के 11 भी बज जाएंगे तो मम्मा मुरली पढ़े बगैर सोएगी नहीं कभी भी। और फिर उसके बाद नाश्ता होने के बाद 9 बजे के आसपास बहनों को मम्मा संदली पर बिठा के मुरली के पॉइंट्स पर भाषण करने के लिए सिखाते थे। तो इस तरह से मम्मा बच्चों की पालना करती थी। तो भाषण के इसमें बहुत लोगों ने अनुभव लिखा है कि मम्मा ने भाषण करना कैसे सिखाया। तो निर्वैर भाई ने अपने अनुभव में लिखा है कि जब वो बम्बई में थे, नेवी में थे ना, तो उनके साथ और ऐसे 8 उनके फ्रेंड्स थे जो ज्ञान में चल रहे थे, बस नए नए आए थे, और तभी मम्मा बॉम्बे गए थे। और बॉम्बे का एक एरिया है नल बाजार, जो मुस्लिम लोकेलिटी है पूरा, और उधर से एक बार निमंत्रण आया था बहनों को कि आके आप लोगों को कुछ भाषण करना है। शांति के ऊपर कुछ कॉन्फ्रेंस था, उसमें सब मौलाना और ये सब आने वाले थे, परंतु रात का टाइम था। तो सारी बहनों ने बोला कि हम तो नहीं जाएंगे। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है, निर्वैर को भेज दो। तो निर्वैर भाई ने कहा कि मुझे तो भाषण देने आता ही नहीं। तो मम्मा ने कहा आओ मैं तुमको सिखाती हूँ। तो मम्मा ने 5-10 मिनट में ही उनको सिखा दिया कि भाषण कैसे करना होता है, कि कैसे पहले उनकी तारीफ करो, फिर उसके बारे में शांति के बारे में बताओ, फिर सतयुग के बारे में बताओ, और कैसे अपने साथ 2-3 चित्र लेके जाओ और उनको फिर वो चित्र फ्री में दो। इस तरह मम्मा भाषण देना सिखाए। ऐसे ही रमेश भाई लिखते हैं कि मम्मा ने उनको भाषण देना कैसे सिखाया, कि मम्मा कहती थी कि उन्होंने मम्मा को पूछा कि आप क्या करते हो, तो मम्मा कहती मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ संदली पर जाके बैठ जाती हूँ और बाबा जो मुझसे बुलवाता है मैं वो बोलती हूँ। तो जैसे कि हम पहले से इतनी प्रिपरेशन करते हैं और लिख के आते हैं और पढ़ते हैं, तो मम्मा कहती वो तो जैसे कि पंडित पंडित करता है, रट के बोलता है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो रमेश भाई लिखते हैं कि ये चीज़ उनको कितनी काम में आई कि एक बार वो कहीं बाहर गए थे और दादी जानकी ने कहा कि आप आगे जाके थोड़ा चालू करो, मैं आती हूँ पीछे से। तो ऐसे ही वो गए और उनको टॉपिक तक नहीं पता था। तो दो भाई खड़े थे, उनको टॉपिक पूछा, उनको नहीं पता, और दो भाई खड़े थे, उनको पूछा नहीं। जब वो स्टेज पर पहुंचे, जब उनको टॉपिक पता चला, लेकिन क्योंकि मम्मा ने सिखाया था कि कोई बात पहले प्रिपेयर नहीं करके जानी, बाबा जो बोलेगा वो बोलना है, ऐसे ही उनका भाषण 2-2.5 घंटा चला। तो मम्मा ने जो सिखाया वो कैसे उनके मदद में आया। और मम्मा यज्ञ में इकोनॉमी करना भी बहुत सिखाती थी। तो जब मम्मा बॉम्बे में थे तो रमेश भाई उनको कार में लेके जाते थे सेंटर तक। तो मम्मा कहती थी कि आप ना ये शॉर्टकट रास्ते से लेके जाओ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मम्मा ने कहा पेट्रोल वेस्ट होता है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यही रास्ता है, इधर से ही जा सकते हैं। तो कैसे छोटी छोटी बातों में, ऐसे ही एक बार गेहूं की बोरी भर रहे थे बच्चे, और होके सब कुछ भर चुका था और कुछ कुछ गेहूं के दाने गिरे हुए थे। तो मम्मा आके उसको समेटने लगी और मम्मा ने उनको बताया कि कैसे एक एक गेहूं का जो दाना है वो मोहर के बराबर है, इतना कीमती है, इतनी वैल्यू है यज्ञ की हर चीज़ की, तो इसको हमको वेस्ट नहीं जाने देना है ऐसे। और फिर मम्मा का स्व पुरुषार्थ भी बहुत था, अब तीव्र पुरुषार्थ थी। मम्मा हमेशा अपने आप को गुप्त रखती थी। और मम्मा ये भी सिखाती थी कि पुरुषार्थ हमेशा गुप्त होना चाहिए, इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी कहा मम्मा ने कि ऐसा नहीं है कि आप सबसे अलग होके योग में बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। सबके साथ रहते हुए, सेवा में आते हुए, अपने आप को गुप्त रखते हुए अपना पुरुषार्थ चालू रखना है। तो किसी ने मम्मा को एक बार पूछा कि मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती हो, आप इतना आगे कैसे जा रही हो? तो मम्मा ने कहा कि ऐसी एक तो कोई बात नहीं होती जिससे आगे जाएंगे। तो फिर भी मम्मा को पूछा गया तो मम्मा ने कहा कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, उस दृढ़ता के कारण मैं इतना आगे जा सकती हूँ। तो दृढ़ता के बारे में मम्मा ने बताया। इस तरह से मम्मा का बहुत तीव्र पुरुषार्थ था। और एक बार रमेश भाई ने किसी से पूछा कि मम्मा पाड़ती है क्या? तो कहा क्यों? तो बोले मम्मा ऐसी साड़ी क्यों पहनती है। मम्मा का साड़ी पहनने का ढंग जो था वो दूसरी बहनों से अलग था। तो कहते हैं कि मम्मा जो स्कूल में पढ़ती थी वो पारसी स्कूल थी, तो इसीलिए मम्मा में थोड़ा वो आ गया था, तो वो इसलिए मम्मा पारसी स्टाइल में पहनती थी साड़ी। तो ऐसे रमेश भाई के अनुभव में लिखा था। और मम्मा की पवित्रता की शक्ति भी इतनी थी ब्रह्मचर्य की कि आकर्षित करती थी वो। तो जगदीश भाई अपने अनुभव में लिखते हैं कि वो सुंदर भी थी, पवित्र भी थी, लेकिन उस तरह से लोग आकर्षित नहीं होते थे, परंतु उनकी पवित्रता से आकर्षित होते थे। और जैसे कि अगर मम्मा ने किसी को स्पर्श कर दिया तो उसको लगता था जैसे कि हमारे सारे मैल धुल गए, हमारी सारी अपवित्रता निकल गई, ऐसे थे। और ऐसे भी बहुत बार होता था जब हंगामा होता था तो लोग कहते थे कि इनकी मम्मा बहुत बड़ी देवी है ना, चलो जाके इसको देखते हैं, ऐसे सोच के लोग आते थे उनके सामने, परंतु उनकी शक्ति के सामने लोग ठहर नहीं पाते थे और नतमस्तक हो जाते थे ऐसे कहते, और शांत हो जाते थे कि हाँ, जैसे कि बताते कि देवियों के सामने जब राक्षस वेश बदल के आते थे तो देवियाँ कैसे पहचान लेती थी। तो ऐसे ही मम्मा के सामने अगर कोई आता था ना तो मम्मा कहती थी उधर ही रुक जाओ और पहले अपनी वृत्ति को पवित्र करो, फिर माँ के पास आना। तो इतनी मम्मा में शक्ति और बल था। और मम्मा निर्भय भी बहुत थी, इसलिए मम्मा की जैसे दुर्गा के रूप में पूजा होती है। तो जब कोर्ट केस होता था, एक बार ऐसे कोर्ट केस हुआ तो मम्मा बाबा मम्मा को ही आगे रखते थे, तो मम्मा को भेजा, तो मम्मा कोर्ट में भी इतना निर्भय होके गई और जज को कहा कि आपको क्या लगता है कि ये बाबा सबको भगाता है क्या? आपको लगता है कि ये हम लोगों को भगा के लेके आया है? ये तो खुद ही गृहस्थी है और है ना, मम्मा ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि निराकार परमात्मा इसके तन में आता है, और इसमें तो इतनी पावर है ही नहीं, ये तो गृहस्थी है, ये कहाँ से पवित्र बनने के लिए कहेगा। जो आ रहा है और कह रहा है वो तो भगवान है, और भगवान का आदेश है इन कन्याओं माताओं को कि पवित्र रहो। तो फिर जज भी सुनकर डर गया थोड़ा, क्योंकि भगवान का नाम ले लिया, तो जब जज भी एकदम ऐसे हो गया। इस तरह से मम्मा किस तरह से निर्भय होकर उत्तर देती थी। एक बार ऐसे ही हुआ कि बहुत सारी बहनों के नाम पे वारंट आते थे ना, क्योंकि सब एज कम थी उन लोगों की। तो एक बार बाबा ने ऐसे ही कहा मॉर्निंग में कि मम्मा आज वारंट आपके नाम पे आएगा। तो मम्मा ने तुरंत बोला कि मेरे नाम पे तो आ ही नहीं सकता, मैं तो 18 साल की हो चुकी हूँ और मेरा तो कोई नहीं है, मेरी सिर्फ माँ है, तो अगर कोई भेज ही नहीं सकता, और वो तो ऐसे नहीं करेगी। ऐसे बोल के हो गया। फिर 10 बजा और रहना दरवाजे पर मम्मा के नाम पे वारंट आया। तो मम्मा ने कहा ये मेरी माँ की साइन है ही नहीं, और ये नाम मेरी तो जन्म तारीख इतनी है तो मेरा नहीं है ये, तो भी एक्सेप्ट तो करना पड़ता था और जाना पड़ता था कोर्ट में। फिर मम्मा कोर्ट में गए, तो फिर कोर्ट में मम्मा ने बड़े एकदम उससे कहा कि ये मेरे नाम का वारंट है ही नहीं, और अगर ये और मेरी माँ ऐसी साइन नहीं करती है, बुलाओ मेरी माँ को कोर्ट में और पूछो उससे, अगर ये मेरी माँ की साइन है तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। फिर मम्मा की माँ को बुलाया गया, फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी साइन नहीं है, इस तरह से। और फिर मम्मा ने जज को इतना भी बोला कि आप ऐसी महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो क्या, तो फिर जज भी चुप बैठ गया। तो इस तरह से निर्भयता के रूप में मम्मा का पाठ था। मम्मा जब चलते थे तो बहुत रॉयल्टी से चलते थे, तो बाबा कहते थे कि देखो बच्चे, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। तो मम्मा कहती थी कि जो जोर जोर से चलता है तो वो कौन होता है, जो जोर जोर से चलता है वो रावण होता है, और जब रावण चलता है तो धरती भी कांपती है। लेकिन आप बच्चों को 5 तत्वों की भी सेवा करनी है, 5 तत्वों को भी सुख देना है आपको। तो कहते हैं कि मम्मा जब चलती थी तो जैसे फरिश्ता और लाइट लगती थी, और मम्मा बाजू से भी चली जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि मम्मा चली गई, और बच्चों बच्चों के पीछे आके उनकी एक्टिविटी को देखना, ऐसे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि मम्मा आके खड़ी है। एक बार ब्रिजमोहन भाई अपने अनुभव में लिखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे एक बार खड़े थे और ट्रेन छूट गई, तो सब बहनें भागने लगी, तो ब्रिजमोहन भाई ने बोला भागो मम्मा भागो, तो मम्मा बोली नहीं मम्मा नहीं भागेगी। तो किस रॉयल्टी से उनका चलना उठना बैठना बोलना था, तो उस रॉयल्टी से मम्मा चलती भी थी। और फिर नलिनी बहन अपने अनुभव में लिखते, मम्मा छोटे बहनों को कैसे पालना करती थी, जब ये ज्ञान में आए थे छोटे थे बहुत, तो मम्मा ने उनको एक दिन पूछा कि बच्ची आपका लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने बोला खाओ पियो और मौज करो। तो मम्मा ने कहा अच्छा, तो उसी कमरे में फिर एक चिड़िया का घोंसला था, और वो चिड़िया अपने बच्चे को तोड़ तोड़ के खाना उसके मुंह में डाल रही थी। तो मम्मा ने कहा देख रही हो वो, तो बोले हाँ, तो बोले क्या, तो फिर मम्मा ने कहा कि देखो वो प्राणी को भी कितनी बुद्धि है और मनुष्य को तो कितनी बुद्धि है, और फिर भी अगर वो अपने लक्ष्य को ऐसे बोले कि खाओ पियो और मौज करो तो कैसे चलेगा। तो किस तरह अपने लक्ष्य के प्रति उनको गंभीर बनाया मम्मा ने। और फिर वो बोलते हैं ना कि पापा को 108 चित्र बनाने थे तो मम्मा को दिया गया, ऐसी एक बार बाबा ने कहा गोला सीढ़ी और चक्र, ऐसे 3 चित्र को धागे के रूप में पूरे किस पे बनाना था और कुछ टाइम लिमिट था। तो मम्मा ने अपना एवर रेडी ग्रुप तैयार किया था, एक जब भी ऐसे कुछ काम रहता था तो मम्मा अपने एवर रेडी ग्रुप को बुलाती थी। तो बाबा ने ये काम दिया तो मम्मा ने कहा जी बाबा, और फिर उस एवर रेडी ग्रुप को बोला, तो फिर एवर रेडी ग्रुप तो बोला कि ये होगा नहीं, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, जब बाबा ने कहा है तब ज़रूर होगा। इसी तरह से वो 108 जो बनाने थे ना चित्र, उसमें कोई बता रहा था कि मम्मा ने रात भर सबको बिठा के काम करवाया, तो गुलजार दादी बहुत छोटे थे तो बाजू में बैठे थे, तो रात हो रही थी तो दादी ने कहा कि मम्मा वो तो बाबा तो सागर है ना, उसकी लहरें चलती रहती है, तो वो तो ऐसे बोलेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने आपको जाके सोना है तो आप सो जाओ, लेकिन मम्मा नहीं सोएगी, इस तरह से। और फिर भोजन भी मम्मा बड़े अनास्तक भाव से स्वीकार करती थी। और जो भोग का सिस्टम लगा यज्ञ में, वो भी मम्मा के द्वारा ही लगा। जब दादियाँ सेवा पे गए थे बाहर, तो कुछ भी उनको मिलता था तो वो लोग तुरंत मधुबन में बेचते थे, ये सोच के कि बाबा को पहले देंगे। तो मम्मा ने कहा, नहीं बच्चे, आप लोग वहीं रहकर भोग लगाओ और फिर स्वीकार करो। तो उस तरह से भोग लगना चालू हुआ। मम्मा कभी जोर से हंसती भी नहीं थी, हंसी मजाक से बहुत दूर, अपने पुरुषार्थ में हमेशा बिजी रहती थी। लेकिन ये नहीं कि खेलना, पिकनिक, ये सब कुछ करते हुए वो अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। तो इस तरह से कल हम सरला बहन का पढ़ रहे थे, छोटी छोटी बातें हैं। देखो वो अपने अनुभव में लिखते हैं कि उनको दो चोटी बांधने का और कलर कपड़े पहनने का बहुत शौक था। तो मम्मा ने एक दिन उनको कहा कि बच्ची, देवियों की देवियों के बाल कैसे होते? देवियों के बाल या तो खुले होते हैं या तो एक चोटी होती है। तो उन्होंने अपने अनुभव में लिखा कि मम्मा ने कैसे मुझे मेरी दो चोटी खुलवा दी हमेशा के लिए और एक चोटी बनवा दी। तो वो भी ऐसे लिखते हैं। और उन्होंने मम्मा ने उनको एक दिन कहा, देखो बच्ची, ये माँ माँ भी है और काली भी है, और एक दिन आपकी बलि लेके ही छोड़ेगी। तो सरला बहन अपनी लौकिक माँ का ध्यान रखती थी। तो इस बार मम्मा ने फिर उनको कहा कि देखो, आप इस माँ की सेवा के लिए जगत माता बनने से वंचित रहना चाहती हो? तो ऐसा तीर लगा उनको कि फिर वो यज्ञ में और सेवा में समर्पित हो गई। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों में मम्मा उनको सिखाती थी। और हाँ, जब भी कोई मम्मा बाबा के पास आता था या कोई बात करनी होती थी, तो एक यज्ञ में एक रूल था कि कोई भी आएगा तो पहले मुरली की पॉइंट बोलेगा और फिर अपनी बात बोलेगा और एंड में भी मुरली की पॉइंट बोलेगा। इस तरह से जब भी मम्मा बाबा कोई पत्र लिखते थे तो तभी भी मुरली की पॉइंट पहले लिखते थे और फिर पत्र लिखा जाता था। और यज्ञ में जब बैगरी पाठ चला 4-5 साल, तभी भी मम्मा का पाठ ऐसे था कि कितनी धैर्यता से, सहनशीलता से, सबको समझते हुए मम्मा ने संभाला। क्योंकि बच्चे छोटे थे, ठंडी थी, कभी दवाई नहीं होती थी, कभी खाने को कुछ नहीं होता था, तो भी मम्मा ने एक एक बच्चे की पालना की। और ऐसे भी जैसे कि दो बच्चे मम्मा के पास अगर लड़ते हुए आते थे तो मम्मा कैसे दोनों को भी खुश करके भेजती थी, और सबको जैसे लगता था कि ये मम्मा मेरी मम्मा है, इतना उनको भाव था। और फिर एक बार जानकी दादी ने मम्मा से कहा कि मम्मा, आप मन को कैसे संभालती हो? तो मम्मा ने कहा कि ये मन जो है ना, ये छोटा बेबी है और इस मन की आपको पालना करनी है, और मन को ना खुराक देनी है, उसको ज्ञान अमृत पिलाना है, इस तरह से। और उनको एक बार, मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूँ, उन्होंने पूछा। तो मम्मा ने कहा कि आप हमेशा ये सोचो कि जहाँ मुझे देख रहा है। तो ये बात उनको बहुत याद रही और उनके सेवा में भी उनको हेल्प किया। और फिर मम्मा की बीमारी के बारे में, तो मम्मा को कैंसर की बीमारी हो गई थी। तो फिर जब डायग्नोसिस हुआ तो फिर यज्ञ के बच्चे तो बहुत घबराए, लेकिन मम्मा बिल्कुल नहीं घबराई। और मम्मा का डायग्नोसिस बॉम्बे में हुआ था, और फिर मम्मा का ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, और जिस हॉस्पिटल में मम्मा एडमिट थे उधर भी बहुत सारी सेवाएं हुई। लोग आते थे, सोचते थे कि ये श्वेत वस्त्र में कौन है, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, और उनको भी लिटरेचर दिए जाते थे, टोली दी जाती थी, तो सबकी बहुत सेवा होती थी वहाँ पर भी। और मम्मा का बीमारी के बारे में इतना अच्छा था उनका जो स्थिति, वो कहती थी कि जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं ना, तो या तो अंत में या तो स्टार्टिंग में हमारे सामने ऐसे पेपर या परीक्षाएं जरूर आएंगी, और है ना, यही हमारी पुरुषार्थ की तीव्रता को प्रतिबिंब करती है। तो इससे घबराना नहीं है। और बाबा भी अपने मुरली में काफ़ी टाइम बताते थे कि ये जो आ रही है इनको आने दो, इससे हिसाब किताब चुकत होता है, इससे ऋण चुकत होता है, तो ऐसे समझाया जाता था। फिर मम्मा का ऑपरेशन हुआ, फिर मम्मा थोड़ा ठीक होके वापस सेवा में जुट गई। इस तरह से फिर मम्मा बैंगलोर में गई, फिर बैंगलोर में सेवा की, फिर वापस थोड़ा रिकरेंस हो गया ये डिजीज़ का, और मम्मा को वापस बॉम्बे लाया गया। तब पता चला कि ये बीमारी फैल चुकी है, और फिर मम्मा को डॉक्टर ने रेडिएशन थेरेपी भी दी वहाँ पर। फिर एक टाइम ऐसे आया कि डॉक्टर ने रमेश भाई, उनको बुलाया और उनकी जो लौकिक बहन थी अनिला बहन, ये उनके साथ जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बीमारी बहुत फैल चुकी है, तो अभी आप इनको जहाँ लेके जाना जा सकते ताकि ये शांति से अपना शरीर छोड़े, इस तरह से बोला। तो रमेश भाई तो बहुत घबराए कि अब क्या करना है, लेकिन रमेश भाई जो शील दादी थे वो ध्यान में जाते थे और संदेशी थे ना वो, तो तुरंत बोला कि अब भी बाबा को बुलाओ अपने तन में और बाबा को संदेश देना है। तो शील दादी ने कहा कि बाबा क्या ऐसे ही है कि किसी के भी तन में कभी भी आएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर बाबा आते शील दादी के तन में और रमेश भाई उनको बताते कि ऐसे ऐसे मम्मा का समाचार है। तो बाबा कहते हैं कि आप एक पत्र लिखो मम्मा को और दे दो कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है, और आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मम्मा की स्थिति में इतना सरंज मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी स्थिति में। लेकिन रमेश भाई के लिए ये बहुत डिफिकल्ट था। फिर उन्होंने लेटर लिखा मम्मा के लिए, और वही लेटर फिर बाबा के पास गया मधुबन, और मम्मा को बुलाया गया। 15 दिन, 4 जून को मम्मा मधुबन पहुंचे। 15 दिन पहले बाबा को संदेश, शिव बाबा द्वारा संदेश पहुंच गया था कि 15 दिन बाद मम्मा शरीर अपना शरीर छूटेगी, और उसी दौरान काफी संदेशियों को भी ऐसे दिखाई दिया कि है ना अभी मम्मा का पाठ खत्म होने वाला है। और एक जो थे मुंबई में, उन संदेशी को ऐसा भी दिखा कि मम्मा व्हाइट चादर में लिपटी हुई है, और प्रकाशमणि दादी को अमृत वेला ऐसा लगा कि मम्मा बहुत तकलीफ में है। और फिर उन्होंने फोन किया तो विश्व किशोर दादा ने फोन उठाया, उन्होंने कहा हाँ मम्मा तो ऐसे मतलब अपनी उसकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको लगता है बहुत गंभीरता है, तो आप ऑक्सीजन साथ में लेके आना, इस तरह से था। लेकिन मम्मा का जो चेहरा था वो दिखाता ही नहीं था कि उनको कोई तकलीफ है, ऐसा लगता था, सबको लग रहा था कि मम्मा इम्प्रूव हो रही है और मम्मा अभी ठीक हो जाएगी। और इस दौरान भी मम्मा अपने कमरे में रहती थी और मुरली कभी मिस नहीं की, एम्पलीफायर पे मुरली मम्मा सुनती थी और बच्चों को मिलती थी तभी भी बड़ी मीठी दृष्टि देती थी। किसी को ऐसा लगता ही नहीं था कि मम्मा का शरीर अभी छूटने वाला है और कुछ दिन में ऐसे कुछ होने वाला है। और फिर 24 जून को, जैसे पता है हम सबको कि अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे, और बाबा ने सारे जितने भी सेवाधारी थे वहाँ पर, जितने भी माली थे मिस्त्री थे, सबको बाबा ने चार चार अंगूर बाबा ने मम्मा के द्वारा दिए, मम्मा ने सबको दृष्टि दी। और फिर भोजन करके सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, और बाबा को बहुत ऐसा था, बाबा उनको बहुत पावरफुल दृष्टि देते थे और बार बार संतरी दादी को भेजते थे उनके रूम में देखने के लिए कि मम्मा कैसी है, देख के आओ मम्मा कैसी है, देख के आओ। फिर शाम को ऐसे हुआ कि है ना एक वो गए अंदर और मम्मा का शरीर छू मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो तुरंत बाबा पहुँच के उनको दृष्टि दिए। और बाबा की स्थिति भी बताते हैं कि इतनी अच्छी थी कि मम्मा के जाने पर बाबा को जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर बाबा जाते हैं और सबको पत्र लिखना चालू कर देते हैं कि अभी मम्मा ने शरीर छोड़ा है और सबको आना है, इस प्रकार से ये पाठ था। लेकिन और दूसरा भी था कि जो मम्मा ने शरीर छोड़ा तो अभी जो मम्मा का संस्कार का कार्यक्रम था वो भी बाबा ने इतनी युक्ति से सब कुछ किया। वो बाबा चाहते थे कि कोई रोए नहीं, कोई दुख की लहर ना हो, तो बाबा ने बड़ी युक्ति रची उसमें और कहा कि देखो बच्चे, अगर हम अखंड योग करेंगे ना और बहुत अच्छे से योग लगाएंगे तो शायद हो सकता है कि शिव बाबा मम्मा को वापस भेज दे इस तन में। तो सब बच्चे ये सुन के बड़े खुश हुए और सब ने फिर योग लगाना चालू किया, और सारे सेंटर पर भी ये वातावरण हो गया था कि सब ने योग भट्टी करना चालू की, और सब और किधर भी दुख की लहर नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई याद नहीं, जो सब सब याद में मगन थे। और बाबा बार बार संदेशी को भेजते थे और पूछते जाओ जाओ बच्ची देख कर आओ, तो वो बच्ची भी देखती थी कि धागे बाबा धागे दिख रहे धागे, तो बाबा बोलते थे और योग लगाओ फिर हम रस्सी डाल के मम्मा को खींच लेंगे। तो इस तरह से ये चल रहा था। और फिर बाबा ने कहा कि ये जो इतनी पवित्र थी तो इसके जो संस्कार में भी इनकी जो अर्थी उठे, तो पवित्र जो है जिनको संकल्प में भी कोई विकार नहीं है वो ही मम्मा की अर्थी को उठाएंगे। तो चक्रधारी बहन लिखते हैं कि हम 5 कन्याएं थी जिन्होंने मम्मा को सजाया, और तो उसमें चक्रधारी बहन भी एक थे। तो इस तरह से मम्मा को फिर तैयार करके लेके गए। और हाँ ऐसे बोलते हैं कि 2 बार वो संदेश जब आया था ना, संदेश जब आया था बाद में, तब कि 2 बार मम्मा बाबा ने मम्मा को भेजा था कि जाओ बच्चे अब अनुभव करके आओ उस शरीर में, तो तब मम्मा रात में जब योग बत्ती चल रही थी तब आए थे। और एक बात बहुत अच्छी थी कि जैसे कि सरस्वती का जो चित्र है वो हमेशा युवा अवस्था में ही रहता है, तो कहते हैं कि उस मूर्ति की कभी भी वृद्धावस्था की नहीं बताई जाती, तो फिर बच्चों को बताया बाबा ने कि देखो उसकी उसी नाम रूप में पूजा हुई और उसने उसी एज तक अपना कर्तव्य किया, इसलिए उनकी पूजा सरस्वती के रूप में होती। और प्रजापिता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की जो पूजा होती है वो तो वृद्धावस्था में भी है, तो ये भी बताया गया। तो ये वो सब संदेश संदेश में था, इस तरह से मम्मा की जीवन कहानी थी। और कितना भी बोले उतना कम है, बहुत सारे लोगों के अनुभव है, तो अभी कल से हम अनुभव सुनेंगे अलग अलग भाई बहनों का, तो और मम्मा के बारे में हमको पता चलेगा। इतनी विशेषताएं इतनी धारणाएं थी कि जितना बोलो उतना कम। फोर्टी फाइव 1919 में जन्म हुआ, 1965 में शरीर छोड़ा, 24 जून। अट्ठाईस तीस साल ज्ञान में। हाँ
13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जनरल डायर ने, जनरल डायर गोलियों से बहुत सारे किसानों को।
हाँ जलियांवाला बाग।
उसके आसपास ये मम्मा का भी मकान है ना, ऐसे सुनने में आता है। उसके पास एक कटड़ा आलू वालिया है, तो वहीं ऐसे सुनने में आता है कि वहाँ मकान था उनका, पुराने डिजाइन के मकान।
और कुछ? शांति।